ये आकाशवाणी है, अब आप विशाल शर्मा से समाचार सुनिए। संयुक्त राष्ट्र महासचिव अंतोनियो गुतरश ने भारत और पाकिस्तान के बीच संघर्ष विराम का स्वागत किया है। उन्होंने इसे तनाव कम करने की दिशा में सकारात्मक कदम बताया है। महासचिव के प्रवक्ता स्टीफन दुजारिक ने कहा कि श्री गुतरश को उम्मीद है कि इस संघर्ष विराम से शांति स्थापित करने में मदद मिलेगी और दोनों देशों के बीच लंबे समय से चल रहे सीमा विवाद को हल करने में अनुकूल वातावरण उत्पन्न होगा। विदेश सचिव विक्रम मिश्री ने कहा है कि पाकिस्तान के साथ बनी सहमति के बार बार उल्लंघन को भारत गंभीरता से ले रहा है। नई दिल्ली में कल संवाददाताओं से बातचीत में श्री मिश्री ने कहा कि सशस्त्र बलों ने संघर्ष विराम उल्लंघन का उचित जवाब दिया है। भारत ने पाकिस्तान से संघर्ष विराम उल्लंघन को समाप्त करने के लिए उचित कदम उठाने तथा स्थिति से गंभीरता और जिम्मेदारी के साथ निपटने का आह्वान किया है। श्री मिश्री ने कहा कि सशस्त्र बलों को अंतर्राष्ट्रीय सीमा और नियंत्रण रेखा पर पूरी सतर्कता बरतने और संघर्ष विराम उल्लंघन की किसी भी घटना से सख्ती से निपटने के निर्देश दिए गए हैं।
इस समझौते का पाकिस्तान की ओर से घोर उल्लंघन हो रहा है। भारतीय सेना जवाबी कार्रवाई कर रही है और इस सीमा अतिक्रमण से निपट रही है। ये अतिक्रमण अत्यंत ही निंदनीय है और पाकिस्तान इनके लिए जिम्मेदार है। हमारा मानना है कि पाकिस्तान इस स्थिति को ठीक से समझे और इस अतिक्रमण को रोकने के लिए तुरंत उचित कार्रवाई करे।
विदेश सचिव ने कहा कि पाकिस्तान के सैन्य ऑपरेशन महानिदेशक ने कल दोपहर संघर्ष विराम का आह्वान किया, जिसके बाद चर्चा हुई और ये सहमति बनी। विदेश मंत्रालय ने स्पष्ट किया कि गोलीबारी और सैन्य कार्रवाई रोकने पर दोनों देशों के बीच सीधे तौर पर सहमति बनी। किसी अन्य मुद्दे पर और किसी अन्य स्थान पर बातचीत करने का कोई निर्णय नहीं हुआ। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने भारत और पाकिस्तान के बीच संघर्ष विराम की घोषणा के तुरंत बाद एक उच्च स्तरीय बैठक की अध्यक्षता की। नई दिल्ली में प्रधानमंत्री आवास पर हुई बैठक में विदेश मंत्री सुब्रमण्यम जयशंकर, रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह, राष्ट्रीय सुरक्षा सलाहकार अजीत डोभाल, प्रमुख रक्षा अध्यक्ष और तीनों सेनाओं के प्रमुख शामिल हुए। सरकार ने कहा है कि युद्ध के कई गेमिंग वीडियो हाल के भारत पाकिस्तान संघर्ष के वास्तविक फुटेज के रूप में प्रसारित किए जा रहे हैं। लोगों को ऐसे प्रोपेगेंडा से बचने की सलाह दी गई है। पत्र सूचना कार्यालय की फैक्ट चेक इकाई ने कहा है कि सोशल मीडिया पर ऐसे गेमिंग वीडियो बड़ी संख्या में दिखाए जा रहे हैं। रक्षा मंत्री ने के कार्यालय के नाम से व्हाट्सएप पर ऐसा संदेश भी प्रसारित हो रहा है, जिसमें भारत पाकिस्तान संघर्ष की स्थिति के मद्देनजर नागरिक तैयारियों के निर्देश दिए गए हैं। पत्र सूचना कार्यालय ने कहा है कि ये संदेश फर्जी है और सरकार ने ऐसा कोई निर्देश जारी नहीं किया है। इस संवेदनशील समय में प्रत्येक जानकारी की सावधानी पूर्वक जांच करना महत्वपूर्ण है। कोई भी संदिग्ध सामग्री, विशेष रूप से भारतीय सशस्त्र बलों से संबंधित या मौजूदा स्थिति से संबंधित किसी भी जानकारी की सूचना पीआईबी फैक्ट चेक यूनिट को देनी चाहिए। ऐसी सामग्री व्हाट्सएप नंबर 8799711259 और ईमेल आईडी factcheck@pib.gov.in पर भी भेजी जा सकती है। गृह सचिव गोविंद मोहन ने पाकिस्तान की सीमा से लगे राज्यों के मुख्य सचिवों के साथ कल वीडियो कॉन्फ्रेंस के माध्यम से बैठक की। सूत्रों ने बताया कि राज्यों को सतर्क रहने, सीमा पार से किसी गोलीबारी से निपटने और अपने क्षेत्र में नागरिक रक्षा तंत्र को सक्रिय करने को कहा गया है। भारत और पाकिस्तान के बीच संघर्ष विराम की घोषणा के बाद ये बैठक हुई। पंजाब के राज्यपाल और चंडीगढ़ के प्रशासक गुलाब चंद कटारिया ने नागरिक रक्षा प्रशिक्षण के महत्व पर जोर दिया है और कहा है कि कड़ी चौकसी बनाए रखना समय की जरूरत है। कल शाम एक सर्वदलीय बैठक में उन्होंने इस बात पर जोर दिया कि किसी भी तरह की लापरवाही नहीं बरती जानी चाहिए और हर चुनौती का डटकर सामना किया जाना चाहिए। इससे पहले सभी धर्मों के प्रतिनिधियों के साथ एक बैठक में उन्होंने समाज के सभी वर्गों के बीच एकता बनाए रखने और सशस्त्र बलों के साथ एकजुट खड़े रहने का आह्वान किया। दिल्ली हवाई अड्डे से उड़ानों की आवाजाही सुचारू रूप से जारी है। दिल्ली अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डा लिमिटेड ने एक परामर्श में कहा है कि वर्तमान परिदृश्य में नागर विमानन सुरक्षा ब्यूरो के अनिवार्य सुरक्षा प्रोटोकॉल के लिए उड़ानों के समय में बदलाव हो सकता है और यात्रियों की सुरक्षा जांच के दौरान भी इंतजार करना पड़ सकता है। यात्रियों को संबंधित एयरलाइन के संचार माध्यमों से संपर्क में रहने और निर्धारित दिशा निर्देशों का पालन करने को कहा गया है। पाकिस्तानी सेना की एक मिसाइल गलत निशाने पर अपने ही रिहायशी इलाके में एक गुरुद्वारे के पास जा गिरी। विस्फोट से गुरुद्वारे की खिड़कियां टूट गईं और लोगों में दहशत फैल गई। घटना के समय गुरुद्वारे में अरदास चल रही थी। पाकिस्तानी सेना की यह न केवल तकनीकी नाकामी है बल्कि ये एक कूटनीतिक और सामाजिक आपदा भी है। वर्ष 2022 और 2024 में भी ऐसी ही घटनाएं हुई थी जिसने पाकिस्तान की तकनीकी प्रणाली को लेकर सवाल खड़े कर दिए थे। पाकिस्तान की सेना चीन से आने वाले कबाड़ हथियारों, गलत तरीके से खरीद, सोशल मीडिया हेरफेर और झूठे अभियानों पर चल रही है। बलूच लिबरेशन आर्मी ने बलूचिस्तान में 39 स्थानों पर कई हमलों की जिम्मेदारी ली है। हमारे संवाददाता ने आर्मी के हवाले से बताया है कि ये अभियान कई रणनीतिक उद्देश्यों को पूरा करने के लिए चलाया जा रहा है।
बलूच लिबरेशन आर्मी के प्रवक्ता जियांद बलूच ने कहा है कि हमलों में कई ठिकानों को निशाना बनाया गया है। इनमें पुलिस थाने, सैन्य काफिले और प्रमुख राजमार्गों के किनारे ढांचागत केंद्र शामिल हैं। बलूच लिबरेशन आर्मी ने पुलिस थानों पर कब्जा करने और क्षेत्र की प्रमुख सड़कों पर नाकाबंदी करने का भी दावा किया है। बलूच लिबरेशन आर्मी पाकिस्तान के बलूचिस्तान में बलूच लोगों की आजादी के लिए प्रयासरत एक सशस्त्र अलगाववादी गुट है। बलूच लिबरेशन आर्मी ने दावा किया है कि बलूचिस्तान के विशाल प्राकृतिक संसाधनों का स्थानीय आबादी को लाभ पहुंचाए बिना दोहन किया जा रहा है और सरकार बलूच लोगों को उनके अधिकारों और स्वायत्तता से वंचित कर रही है। समाचार कक्ष से मुकेश कुमार।
बांग्लादेश में अंतरिम सरकार ने आतंकरोधी कानून के तहत पूर्व प्रधानमंत्री शेख हसीना की अवामी लीग पार्टी की सभी गतिविधियों पर प्रतिबंध लगा दिया है। ये प्रतिबंध पार्टी और उसके नेताओं के खिलाफ मुकदमा पूरा होने तक जारी रहेगा। रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने कहा है कि राष्ट्रीय प्रौद्योगिकी दिवस पर भारत उन वैज्ञानिकों, इंजीनियरों और तकनीशियनों को नमन करता है जो देशवासियों के जीवन में सकारात्मक बदलाव लाने के लिए नई तकनीक विकसित करके योगदान देते हैं। सोशल मीडिया पर पोस्ट में रक्षा मंत्री ने कहा कि राष्ट्र गर्व के साथ उन वैज्ञानिकों के असाधारण प्रयासों को याद करता है जिनके कारण 1998 में पोखरण में सफल परीक्षण हुए थे। उन्होंने कहा कि ये भारत के इतिहास में एक निर्णायक क्षण था। ईरान के विदेश मंत्री सईद अब्बास अराक्षी ने कहा है कि अमेरिका से बातचीत में वो अपने परमाणु अधिकारों से समझौता नहीं करेगा। दोनों देशों के बीच आज ओमान में परमाणु वार्ता का नया दौर होना है। कल दोहा में चौथे अरब ईरान सम्मेलन में श्री अराक्षी ने जोर देकर कहा था कि ईरान हमेशा ही परमाणु अप्रसार संधि का सदस्य रहा है और यूरेनियम संवर्धन सहित परमाणु ऊर्जा के शांतिपूर्ण इस्तेमाल का अधिकार रखता है। उन्होंने ये भी कहा कि ईरान परमाणु हथियार नहीं हासिल करना चाहता और विनाशकारी हथियारों का उसकी सुरक्षा नीति में कोई स्थान नहीं है। रूस के राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन ने यूक्रेन के साथ बिना किसी देरी के 15 मई तक बातचीत शुरू करने का आह्वान किया है। राष्ट्रपति पुतिन ने टेलीविजन संबोधन में कहा कि प्रस्तावित वार्ता तुर्की की राजधानी इस्तांबुल में होनी चाहिए। इसमें दोनों देश नए युद्ध विराम समझौते पर सहमत हो सकते हैं। श्री पुतिन ने कहा कि वे इस बारे में तुर्की के राष्ट्रपति रिसेप तैयप एर्दोगान से बात करेंगे। यूक्रेन ने इस प्रस्ताव पर कोई टिप्पणी नहीं की है। अमेरिका के राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने कल स्विट्जरलैंड में चीन के साथ हुई व्यापार वार्ता का स्वागत किया है। उन्होंने कहा कि दोनों देशों ने मैत्रीपूर्ण और रचनात्मक तरीके से समझौते पर बातचीत की। अमेरिका ने अधिकांश चीनी आयात पर न्यूनतम 145% शुल्क लगाया है। चीन ने जवाब में अधिकांश अमरीकी आयातों पर 125% शुल्क लगाने की घोषणा की थी। भारतीय क्रिकेट कंट्रोल बोर्ड के उपाध्यक्ष राजीव शुक्ला ने कहा है कि बोर्ड के अधिकारी और आईपीएल संचालन परिषद आज प्रतियोगिता पूरा करने के संभावित कार्यक्रम पर चर्चा करेंगे। भारत के ऑपरेशन सिंदूर के बाद बोर्ड ने शुक्रवार को आईपीएल निलंबित कर दिया था। प्रतियोगिता के 16 मैच शेष हैं। भारत पाकिस्तान के बीच संघर्ष के कारण 8 मई को धर्मशाला में पंजाब किंग्स और दिल्ली कैपिटल्स का मैच रद्द कर दिया गया था। श्रीलंका में कोलंबो में खेले जा रहे महिलाओं की त्रिकोणीय एक दिवसीय क्रिकेट श्रृंखला के फाइनल में भारत ने मेजबान श्रीलंका के खिलाफ ताजा समाचार मिलने तक 31वें ओवर में एक विकेट पर 173 रन बना लिए हैं। इससे पहले भारत ने टॉस जीतकर बल्लेबाजी का फैसला किया। इसके साथ ही ये समाचार बुलेटिन समाप्त हुआ।